नमस्कार, मोबाइल वाड़ी पर मैं कपिल चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ में भारतीय कृषक दल से जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार पांडे जी है। आइए जानते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर आज कृषक दल की आवाज उठाया करते हैं। स्वागत करना चाहेंगे हम अपने चैनल पे सर्वेश जी का।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप कम से कम जनता के जो जुड़े हुए जमीन से मुद्दे हैं उनके बारे में हम लोगों से संपर्क करते हैं और हमारी बाइट लेना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ नए साल में नौ वर्ष की आपको और आपके इस मोबाइल वाणी के माध्यम से अपने जनपद और पूरे प्रदेश की तथा देश की जनता को भी हम नौ वर्ष की बधाई देना चाहते हैं। इसके साथ ही मित्रों, बहुत ही दुख के साथ कुछ निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश में जो ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसकी स्थितियों को ग्राउंड जीरो पर हम सारे लोग देख रहे हैं। आज हमारे देश की क्या हालत बना दी गई है पिछले 10 वर्षों से, जब से ये चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जीत कर आई थी। बड़ी उम्मीदें थी, जनता को बहुत ज्यादा आशा दिलाई गई थी, विश्वास तक दिलाया गया था, लोगों ने कसमें भी खाई थी कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, उनकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, जो हमारा एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है उसको भी जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन विदेशों से ला करके और अपने देश के खजाने में जमा करेंगे। इसके अलावा जाने कितनी कितनी समस्याओं के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए थे भाजपा के नेताओं ने, और उसी पर विश्वास करके इस देश की जनता ने भाजपा को बहुत प्रचंड बहुमत से 2014 में सत्ता दिलाई। उसके बाद दोबारा भी इन लोगों ने प्रयास किया कि 5 साल कम मिले हैं हमको, एक मौका और दिया जाए ताकि हम सारी समस्याओं को एड्रेस कर पाएं। उसके बाद हमारी जनता ने फिर विश्वास कर लिया और इस देश की जनता ने दोबारा फिर भाजपा पर विश्वास किया, और उसके बाद 2019 में फिर इनकी जो है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई गई। लेकिन मित्रों, हम लोगों को मिला क्या इस पिछले 10 साल में, जरा विचार करिए। मिला ये कि इन्होंने अपने आप जो भ्रष्टाचार किया, जिसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, इन्होंने चाहे सेंट्रल विस्टा बनाया हो, चाहे इन्होंने जो है वो अपने कार्यालय हर जिले में और अपना जो भाजपा का जो भारत का कार्यालय दिल्ली में बनाया, जरा देखें उन पे कितने सैकड़ों करोड़ रुपया उस पे पानी की तरह बहाया गया। हमारे यहाँ जो चंदा लेने की बात आई, तब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया उसमें कैसे कैसे कानून मैनिपुलेट किए, और वो अरबों खरबों रुपया जो इन्होंने लिया है बड़े बड़े धन्ना सेठों से और तमाम लोगों से ब्लैक मनी, और उसका कोई आज तक हिसाब नहीं दिया। कानून ऐसा बना दिया कि इनसे इनके चंदे का कोई हिसाब नहीं मांग सकता। हमारे यहाँ इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड बनाया, उसका भी आज तक भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं दिया। कोरोना की जो बीमारी चली, वो कोरोना की बीमारी हमारे वैक्सीन बनाने वाले हों, चाहे उस वैक्सीन का यूज करने वाले हों, चाहे हमारे पूरे जिलों के डीएम और सीएमओ हों, पूरे भारतवर्ष में इन लोगों ने अरबों रुपए की अंधी कमाई की, और कोरोना में मेरे सामने एक एक सैनिटाइजर जो 20 रुपए का था वो 1200-1200 रुपए का सैनिटाइजर दिखाया गया, एक एक हाथ में पहनने का दस्ताना और मास्क जिसकी 10 रुपए कीमत थी उसको इन लोगों ने 1500-1500 रुपए का दिखाया। अगर कोरोना काल में जो यहां पर इस बीमारी से निपटने के लिए प्रयास किया गया और उस कोरोना काल के पूरे भ्रष्टाचार की पूरे हमारे जितने भाजपा शासित राज्य थे वहां अगर जांच करा ली जाए तो एक एक डीएम ने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया हर जिले में पैदा किया। मैं दावे से कहता हूं कि इस हरदोई जनपद के डीएम ने कम से कम 3 करोड़ रुपया केवल कोरोना में पैदा किया, इसी तरह हर जिले में पैदा किया गया और उसकी जांच आज तक नहीं कराई गई। मैं तो कहता हूं कि इन सारे जिलाधिकारियों की, सारे सीएमओ की, सारे आईएएस आईपीएस की, ये जितने भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे हों या जितने अधिकारी ऊपर तक कमीशन गया है, इन सबकी प्रॉपर्टी की जांच अगर करा ली जाए तो मैं दावा करता हूं कि 1000-1000 करोड़ रुपया नगद निकलेगा इन लोगों के घरों में, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। और उसके बाद सारा मीडिया हाउसेस बिके हुए, सारा गोदी मीडिया बिका हुआ, कहीं पर कोई आपको गवर्नमेंट के खिलाफ खबर नहीं मिलेगी। जिलों पर हम लोग अपनी प्रेस विज्ञप्ति देते हैं, बड़े दुख की बात है कि हमारी प्रेस विज्ञप्ति को जो शासन के लिए मुद्दे हम उठाते हैं वो हमारे अखबार वाले बेचारे मजबूर हैं, वो कह देते हैं कि भैया क्या करें, हमको ऊपर से
एडिटर इन चीफ से और जो मीडिया हाउस का मालिक है उससे भाई स्पष्ट कहा गया है कि भाजपा के खिलाफ शासन प्रशासन के खिलाफ कोई निगेटिव खबर हम नहीं छाप पाएंगे। सब राम राज्य आ गया है, जैसे राम राज्य की ऐसा लगता है कि राम मंदिर मोदी जी या भाजपा वाले बनवा रहे हैं, पूरी ड्रामेबाजी चल रही है। अरे भगवान राम सबके हैं भैया, सब उनको पूजते हैं, हमारे तो इष्ट देव हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राम के नाम पर तुम पूरा व्यापार करो, इलेक्शन कैंपेन चलाओ। ये राम मंदिर के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को भाजपा अफीम खिला रही है, और अफीम खिला करके उनको नशे में करके और पूरी जनता से फिर वो सन 2024 में वोट लेना चाहती है। मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आप इस नशे में मत आओ, राम सबके हैं, राम का सब सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत से लोग उनको परमपिता परमात्मा भगवान भी मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मंदिर कितने संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बना है, उसका भाजपा को कोई श्रेय नहीं जाता है। लेकिन भाजपा वाले हमारे यहाँ के तमाम लोग गए थे जब ये मामला हुआ था, बाबरी मस्जिद जो है वो जब ध्वंस की गई और वहां पर जो कार सेवा जिन लोगों ने की उनके ऊपर मुकदमे चले, वो एक देखा जाए, मैं ऐसा नहीं कहता, वो जो हुआ उस पर जितने लोगों ने संज्ञान लिया, जिन पर मुकदमे चले, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे और भाजपा के विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वो कन्विक्ट तक किए गए, उनको चेतावनियां अदालतों ने दी। वो गलत काम था, किसी भी ढांचे को, किसी सिविल राइट को उन्होंने जो है वो इस तरह से जो है वो उसके अंदर हस्तक्षेप किया गैर कानूनी, वो एक अलग पहलू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर को बनाने का श्रेय भाजपा कैसे ले सकती है, इसके अंदर कितना पैसा लिया गया, राम मंदिर में जो जमीनें टेक ओवर की गई उनमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला उन जमीनों पर किया गया विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, और जो ये ट्रस्ट बना है मंदिर वाला, इस ट्रस्ट के लोगों ने अरबों रुपया इसमें कमाया है। मेरी मांग है इस मोबाइल वाणी के माध्यम से कि इन सारे जितने ट्रस्टी हैं, जो पूरा न्याय ट्रस्ट है, इसमें जितने लोग हैं, इनकी लोगों की स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, और इसमें जो जमीनों में भ्रष्टाचार हुआ है, जो फंड में भ्रष्टाचार हुआ है, और राम मंदिर पर जो खर्चा आया है, इसके पूरे की जांच, मैं तो ये कहूंगा कि इनकम टैक्स और ईडी ये सारी और जितनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, और इसके पूरे भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की निगरानी में इस पूरे राम मंदिर के घोटाले की जांच की जाए। इसमें अरबों खरबों रुपए का पैसा जो है वो भाजपा वालों ने खाया है, और इसमें भाजपा विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के नेताओं ने इस पूरे देश को लूट के रख दिया है, और राम मंदिर के नाम पर जो अफीम खिलाई जा रही है, हमें उम्मीद है कि हमारे देश की जनता इस अफीम की गोली को कदापि स्वीकार नहीं करेगी, और भाजपा का पूरा जो है कच्चा चिट्ठा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसकी जांच करा करके, चाहे पीएम केयर्स का मामला हो, चाहे कोरोना काल का हो, चाहे राम मंदिर का हो, इसकी सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा, और ये सारे भाजपा के नेता जेल जाएंगे। धन्यवाद।
अगर बात हो रही है भाजपा की, तो हम एक सवाल आपसे और उठ रहे हैं, 370 पर आपका क्या रुझान है? 370 एक ऐसी धारा रही जो अन्य सरकारें रही वो नहीं हटा पाई, लेकिन जब भाजपा आई तभी हटाई। इसका विपक्ष आप
सुन लीजिए 370 हटाने के बारे में, किसी की भी अगर सरकार लोकसभा में है, अभी आपने देखा पिछले दिनों लोकसभा में क्या हुआ, 150-200 हमारे सांसद उनको सस्पेंड कर दिया गया, और इस तरह से मनमाने कानून आप पास कर रहे हैं। 370 धारा हो या कोई आप कानून बनाए या कोई नया कानून बनाए, इसी तरह का एक डिक्टेटरशिप वाले तमाम कानून ऐसे हैं। आप ये देखिए कि कोई भी कानून तभी वो अप्रूव होना चाहिए जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उसका बाकायदा उसके ऊपर बहस हो, उसके गुण दोष पर विचार किया जाए, और उसके पश्चात, ये नहीं कि आप तानाशाही से वो सरकार ले आए कोई कानून, नहीं वहां होता तो ऑर्डिनेंस लेकर के आपने कानून बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून को आपने बनाया उस पर सही, तब हम मानते पूरी तरह से जब उस पर लोकसभा और राज्यसभा में विस्तृत बहस की जाती, और बहस करने के बाद उसमें जनता के, जो हमारी सिविल सोसाइटी के, जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस हैं और तमाम ऐसे लोग हैं बुद्धिजीवी लोग, और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को शामिल किया जाता, और उसके बाद में उनकी भी राय ली जाती, अपोजिशन पार्टीज की भी राय ली जाती, और उसके बाद पूरी एक व्यापक बहस करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में तब 370 को खत्म किया जाता, ताकि सरकार के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। लेकिन अफसोस है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार अपने बहुमत के घमंड में मनचाहे कानून पास कर रही है, और इस तरह इस देश का सत्यानाश कर रही है। आज पार्टियों की हालत यह हो गई है, कि आज जितनी पार्टियां हैं भाजपा सबको अपना दुश्मन मान रही है, और दूसरी पार्टियों के भी नेता और प्रवक्ता मैं देखता हूं टीवी पर बहस करते हैं या कहीं करते हैं, वहां पर स्थितियां ये हो गई हैं कि वहां के जो एंकर बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स में, जो एडिटर इन चीफ और मालिक बैठे हुए हैं अखबारों के, जो चैनलों के मालिक हैं, वो सारे बिके हुए हैं और भाजपा ने सबको खरीद रखा है। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इन सारे लोगों को इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। मीडिया हाउसेस के पास अरबों खरबों रुपया है, ब्लैक मनी है, चैनलों के पास अरबों खरबों रुपया है, और भारतीय जनता पार्टी सबको रिश्वत और घूस खिला रही है, और इसी तरह सब उसका जो है वो बिरदावली गा रहे हैं। कहीं पर सरकार की जो सच्चाई है वो जनता के बीच में नहीं आ रही है। यह इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसका तुरंत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय संज्ञान ले और इस देश को वास्तव में एक वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करें, और इन सारी जितने हमारी एजेंसियां हैं, जितने ये हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी आजादी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करे। ये माननीय चीफ जस्टिस महोदय से मेरी प्रार्थना है, अपेक्षा है, और उनको भी मैं लाख लाख इस बात के लिए बधाई दूंगा अगर वो इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर बात कही जाए भाजपा की, तो भाजपा में अपराध का जो पैराग्राफ है आपके अकॉर्डिंग उसका क्या रुख है?
भाजपा में अपराध तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रहा है। मैं दावे से कह रहा हूं कि भाजपा में अपराध इसलिए वो दिखा रहे हैं आंकड़े कि भाजपा में ज्यादातर अपराध करने वाले और अपराधियों को संरक्षण देने वाले तो इस सरकार में भाजपा ही है। जब भाजपा ही क्रिमिनल क्राइम करा रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई क्राइम दर्ज होगा। अधिकारी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं। अधिकारियों ने यहां पर यह समझ रखा है कि पूरी तरह से अधिकारी जो हैं उनकी ही सरकार है, कहीं पर लोकतंत्र नहीं लग रहा। और ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो हमारे नौकरशाह हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, हालत ये हो गई है कि गांव के अंदर आप जाके देखिए सारे तालाबों पर कब्जे, चक्रोड़ों पर कब्जे, कहीं पर कोई भी आदमी देखने वाला नहीं है। प्रधानों ने ज्यादातर प्रधान सब भाजपा की राम राम माला जप रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं भैया राम राम की माला नहीं जपेंगे तो हमारी प्रधानी की जांच करा देंगे विधायक जी। विधायक जी जो हैं सब ने, किसी ने अपना स्कूल बना लिया, किसी ने डिग्री कॉलेज बना लिया, जनता की किसी को चिंता नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारे हरदोई जिले के एमएलए एमपी की अगर जांच करा ली जाए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हमारे यहाँ के एमएलए एमपी और मंत्रियों की जांच कर ले तो मैं दावा करता हूं कि एक एक के यहाँ 500 करोड़ रुपया नगद निकलेगा।
चलिए अगर बात की जाए, अगर अपराध की हो गई है 370 पे हो गई, हम बहुत छोटी चीज कहना चाहेंगे कि राम राज की अगर बात भाजपा कर रही है तो इससे पहले भी सरकार रही, लगातार जो है कि सरकार बदलती रही और भी सरकारें आई, तब राम राज का क्यों नहीं आया? तब राम राज का नाम क्यों जो है गायब होता चला गया? क्यों लगातार जो है भाजपा को ही राम राज का सहारा लेना पड़ रहा है? राम राज के नाम पर जो है वो आपके अनुसार जो कह रहे हैं वोट आ रहा है, तो राम राज और सरकारों ने क्यों नहीं जो है लागू किया?
राम राज्य जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इन लोगों ने, भाजपा वालों ने इस राम मंदिर को राजनीतिक हितों की स्वार्थ का माध्यम बना लिया है और पूरी तरह से वही इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है 22 तारीख के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह से आप ये धार्मिक कार्यक्रमों को, जिसमें करोड़ों रुपया सरकार के खजाने से जनता की गाढ़ी कमाई का बहाया जा रहा है और उसमें प्रचार अपना करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बड़ा शर्मनाक है। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए और देश की जनता ये सब समझ रही है। ये चाहते हैं कि हम पूरी देश की जनता को अफीम खिला दें, और अफीम खिलाने के बाद में, लेकिन हमारे जैसे लोग अफीम खाने को तैयार नहीं है। हम अपने इंडिपेंडेंट दिमाग से सोचते हैं। आप हमको ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे नरेंद्र मोदी जी या हमारे योगी जी जो भी ये कार्य कर रहे हैं, तो हमको आप ये बताएं कि इसमें सारे लोगों की भागीदारी जो है वो क्यों नहीं होनी चाहिए? आप निमंत्रण भी दे रहे हैं, लोगों के साथ टांट कर रहे हैं, इनके तमाम नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये भाजपा वाले राम मंदिर जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के चंदे से बन रहा है, बाकी इसमें चंदा नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, पिछले 20-25 साल में जब आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में मैं लखनऊ में था, मेरे पास आज भी रसीद रखी होगी, विश्व हिंदू परिषद की रसीद, उस जमाने में 1100 रुपए की रसीद मैंने भी कटवाई थी। विश्व हिंदू परिषद के यहां भी जो पदाधिकारी रहे, चाहे हर्षवर्धन रहे हों, अशोक सिंघल से मैं मिला, अशोक सिंघल अच्छे आदमी थे, लेकिन तब यह नहीं था कि राम मंदिर या इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वोट लिया जाए। इस तरह की गंदी सोच और गंदी नीयत आजकल जो भाजपा की बन गई है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर सबका है, उसमें सबने चंदा दिया है। मैंने भी अशोक सिंघल जी के जमाने में 1100 रुपया दिया था, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन ये एक धार्मिक आयोजन है, इसमें धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं उस दिन 22 तारीख को आप हमारे भारतवर्ष के किसी शंकराचार्य से प्राण प्रतिष्ठा कराइए। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के यजमान बनने क्यों जा रहे हैं? अब कराना ही है तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला हैं, उनके द्वारा करवाइए। हर चीज में श्रेय मोदी जी को क्यों दिया जाए? ये घोर मैं इसका विरोध करता हूं। और इस तरह से मोदी को इंटरनेशनल हीरो, और हो सकता है अगर यही हाल चलता रहा तो ये भाजपा वाले ये चुनाव जीतने के बाद सारे मंदिरों में मोदी जी की फोटो लगवाएंगे और कहेंगे अब मोदी जी पर प्रसाद चढ़ाओ, मोदी जी के सामने घी का दिया जलाओ, और मोदी जी के अलावा राम कृष्ण शंकर जी को पीछे करो, आगे बाबा वा जो है मोदी ये दाढ़ी वाले बाबा को आगे करो, यही इष्ट देव बन के रहेंगे। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।
चलिए, ये तो थे हमारे साथ में भारतीय कृषक दल के जिला अध्यक्ष जी सर्वेश कुमार पांडे जी। हम और भी तमाम लोगों से भी बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे उनकी प्राथमिकता, उनके मुद्दे क्या है। धन्यवाद।